प्राग विज्ञान नमूता ही जाते भई अरहंता की जो विद्यादि सागर सुधी यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की,
जिनके परम पूज्य स्वामी बिंदा श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य स्वामी बिंदा श्री भक्त सागर जी महाराज जी की, उन्हीं संघ की।
हम सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया समझ रहे हैं। जब तक हमारी दृष्टि हमारा सोचने का ढंग नहीं बदलेगा तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता। यह हम पिछले दिनों की चर्चा से निश्चित रूप से जान चुके हैं। मैं हमेशा इस बात को अनुभव भी करता हूं, आप भी अनुभव करते होंगे कि संसार में एक जैसे ही कार्य करने वाले लोग भी अलग अलग दृष्टिकोण रखने की वजह से अलग अलग फल पाते हैं। कार्य एक ही होता दिखाई पड़ता है बाहर से, लेकिन दृष्टिकोण सबके अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति खाने पीने की किसी चीज का त्याग कर देता है और उसके पीछे उसका सोच ये है कि ऐसा करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इस तरह से भी त्याग किया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति चूंकि डॉक्टर ने उससे कह दिया है कि तुम ये चीज खाओगे तो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो वो भी उन चीजों का त्याग कर देता है, उसने भी वही चीज त्याग की। तीसरा एक और व्यक्ति है जो ये विचार करके उस चीज का त्याग करता है कि मेरे जीवन में ये अनावश्यक है, मेरा जीवन इसके बिना भी चल जाए, इसलिए मुझे इस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो तीसरा व्यक्ति किस दृष्टिकोण से उस चीज को छोड़ देता है। चौथा और एक व्यक्ति है जो उस चीज को छोड़ता है, उसका त्याग करता है, किस दृष्टि से, मैं जितना अधिक चीजों को ग्रहण करूंगा उतना मुझे संसार बढ़ेगा, इसलिए मैं अपने संसार को घटाने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपने बांधे हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस वस्तु का त्याग करता हूं। ये भी एक दृष्टिकोण है। सभी ने अलग अलग दृष्टि से त्याग किया है और त्याग तो सबने किया है, लेकिन दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम पिछले दिनों यही बात समझ रहे हैं और अपन लोग इतनी अधिक क्रियाएं करते हैं, इतना सब कुछ धर्म सुनते हैं, अभ्यास भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है, सुख अनुभव नहीं होता है। संसार के सुख अभी श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, आत्मा के सुख की तरफ रुझान नहीं बनता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमारे भीतर अभी वो दृष्टि नहीं आई है, इससे ये तय हो जाए। तो इसलिए हमने पिछले दिनों इस बात को बहुत अधिक जोर देकर के समझने की कोशिश की है, बार बार उसी चीज को याद किया है कि भैया जैसे बने तैसे अपनी दृष्टि निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। निर्मल दृष्टि के मायने यही है कि मैं जो कुछ भी धर्म के कार्य करता हूं या जिन अधर्म के कार्यों से बचता हूं, उस सब के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने आत्मा का कल्याण, अपने बांधे गए कर्मों की निर्जरा करना, उन्हें हटा देना, बुरे संस्कारों को तोड़ना और भले संस्कारों को डालना। इतना प्रयास हम पिछले दिनों से कर चुके हैं। ये एक तरह का अंधकार को हटाने का काम है, और जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है अंधकार हटता है, जो चीज जैसी है वैसी हमें प्रतिभाषित होने लगती है, दिखाई देने लगती है, और जैसे ही उस चीज से हमारा परिचय होता है हम उस चीज की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कमरे में अंधेरा हो और हमें दरवाजा नहीं सूझ रहा है कहाँ है, तो हम इधर उधर टटोल रहे हैं, कभी कभी टकरा जाते हैं दीवार से, और अचानक क्षण भर को रोशनी हो और फिर भले ही गायब हो जाए पर उतनी देर में हमें दिख जाता है कि वो है दरवाजा। अब दीवारों से टकराने की और टटोलने की आवश्यकता नहीं, सीधे जाकर के दरवाजा खोल करके बाहर निकल जाते हैं। मोम तिमराप हरणी दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। बस इतनी यात्रा हो गई अपनी। मोह का अंधकार हटते ही दर्शन लाभात दृष्टि निर्मल हो गई। अवाप्त संज्ञान और मुझे प्राप्त हो गया है आत्मज्ञान, मुझे अब अपना आत्म वैभव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जैसे किसी व्यक्ति के घर में संपत्ति गड़ी हो और उसे नहीं मालूम हो, वो पूरी जिंदगी वहीं रहा आया, लेकिन एक दिन मेटल डिटेक्टर लेकर के कोई आया और उसने कहा कि तुम्हारे यहां नीचे तो अपार धनराशि है, अभी निकाली नहीं है उसने, अभी उस मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो गया है, मालूम पड़ गया है कि यहां पर है, अभी परतें जमी हुई हैं और 10-20 फीट नीचे है, लेकिन इसके बाद भी कैसा लगता है, अब तो मुझे वो चीज प्राप्त हो ही जाएगी। मोह का अंधेरा हटते ही दृष्टि निर्मल हुई, ज्ञान प्राप्त हो गया, अब क्या शेष रहा, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब हमारी सज्जनता इसमें है कि अपने अंतरंग में जान लिया है कि ये संसार बढ़ाने वाले राग द्वेष पड़े हुए हैं, मुझे ज्ञान हो गया है, अभी तक तो मैं इनको अपना ही मानता था, अभी तो मोह के वशीभूत होकर के अपने पराये के बीच में घूमता रहता था, अब समझ आ गया कि यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है, हम जैसा मान लेते हैं वैसा हमें प्रतीत होने लगता है, जिससे थोड़ा इष्ट सदता है उसे मित्र मान लेते हैं, जिससे अनिष्ट की संभावना होती उसे शत्रु मान लेते हैं, वास्तव में कोई यहाँ पर मित्र और शत्रु नहीं है, अपना और पराया नहीं है। इस अपने परायेपन को दूर करने के लिए सब मेरे हैं, ये कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितार्थम, अब मेरे लिए सब अपने हैं, अपने और पराये का भेद ही मैं मिटा दूंगा, इस राग द्वेष को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आचरण सदाचरण अंगीकार राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब मेरी सज्जनता इसमें है, या साधु पुरुष वही है, सज्जन पुरुष वही है जो दृष्टि निर्मल होने पर और ज्ञान निर्मल होने पर और अपने राग द्वेष को हटाने के लिए, उस वीतरागता को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए वाही आचरण को अंगीकार करता है। जैसे किसी ने फाउंडेशन बनानी हो, बना ली हो, प्लॉट लेकर के और फाउंडेशन बना करके क्या करेगा, उसी में रहेगा। कहते नहीं, मकान बनाएगा, चारों दीवारें बनाएगा, ऊपर छत बनाएगा। बस तो चारों दीवार और छत बनाने जैसा ही चारित्र अंगीकार करना है। आज लोग सम्यक दर्शन और ज्ञान प्राप्त किए बैठे हैं, कहते हैं कि जब हमारा ये नक्की हो जाएगा कि सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, तब चारित्र लेंगे, क्योंकि लिखा है कि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र अंगीकार करने से कुछ होता नहीं। ऐसी जो है बात करने वाले लोग भी इस संसार में हैं, सो ठीक है, उनका अपना सोच भी अपनी जगह सही है कि ठीक तो है भाई, दृष्टि निर्मल हो जावे तब उसके बाद जो है सारी बात भली जान पड़ती है। तो भैया जी, दृष्टि कब निर्मल हुई है, इसका कुछ हिसाब है कि नहीं, ये भी तो विचार करना चाहिए। अब जब हमने अपना सब कुछ जितनी हमारे पुरुषार्थ हो सकता था उतना कर लिया अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए, जो भगवान हैं, गुरु हैं और जो अहिंसा धर्म है उसके प्रति भी हमने अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दी, और जैसा भगवान ने तत्वों का स्वरूप कहा है, जीव का अजीव का आश्रय बंध संबंध निर्जरा का और मोक्ष का, सो वो भी हमने जान लिया, अपने आत्मा में भी हमारी रुचि है भैया, और अब इससे ज्यादा और कौन सी चीज बाकी रह गई कि अब हम आचरण अंगीकार ना करें। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी दृष्टि और ज्ञान निर्मल नहीं हुए। अगर दृष्टि और ज्ञान निर्मल हो गए होते तो छटपटाहट होती अपने जीवन को निर्मल बनाने की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसकी दृष्टि और ज्ञान निर्मल हो वो अपने आचरण को निर्मल ना करे, या कि उसका आचरण निर्मल ना हो जाए। आचरण निर्मल नहीं हुआ इसका मतलब है दृष्टि और ज्ञान अभी खोटा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आचरण की निर्मलता आवश्यक है, कम से कम सदाचरण तो आना चाहिए, तब कम से कम नैतिकता तो अंदर में आना चाहिए। लेकिन आज जो है अपन इस चीज को देखते हैं कि ये चीज सिर्फ हम कुछ लोग हैं, सब आधे अधूरे हैं। कुछ लोग हैं जो बाह्य आचरण को ही करने में धर्म मान रहे हैं, और न दृष्टि की निर्मलता का विचार है, न आत्मज्ञान का विचार है, बाह्य कुछ चर्याएं करके सोचते हैं कि हमने धर्म कर लिया। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ऐसा विचार करते कि हम तो अपनी दृष्टि निर्मल हो गई, हमारा ज्ञान निर्मल हो गया, अब जब आचरण होने हुई है सो हो जाए अपन, तो चाहे जो कजू कर अतरों का करने अपन हो, अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब थोड़ा कुछ करना। तो वे लोग भी आधे अधूरे ही हैं, ये कहना पड़ेगा है? अब अपन को विचार करना है कि ऐसी दोनों चीजों के बीच हमें क्या करना है। हमें तो आचार्यों ने जो कहा है वो करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इस पे ज्यादा विचार ना करके आचार्य भगवंत जो हम पे करुणा करके कह रहे हैं कि भैया अब मोह का अंधकार हट गया है, अपने भीतर झांक के देखो और आत्मज्ञान भी हो गया है, आत्मा में रुचि भी हो गई है, अब आत्मा में लीनता के लिए अपने राग द्वेष को हटाने के लिए बाह्य में कुछ आचरण तो ग्रहण करो। आचरण किसे कहेंगे, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। आचरण वो है जिसमें कि अशुभ से निवृत्ति होती है और शुभ की तरफ हमारा रुझान होता है, और हमारा लक्ष्य क्या है, शुद्ध की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। शुद्ध का हमारा लक्ष्य है, लेकिन संकल्प शुभ का है और हमारा प्रयास अशुभ से बचने का है। अशुभ से बचने के लिए शुभ का संकल्प करना पड़ेगा, लक्ष्य तो हमारा शुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब तक हम अशुभ से बचने के लिए शुभ में नहीं लगेंगे तब तक हमारे जीवन में निर्मलता आए बिना कैसे आ सकती है, आए ही नहीं। और हम बनाना चाहते हैं अपना जीवन वैसा निर्मल जैसा कि भगवान का जीवन निर्मल है। हम उस ब्रह्म और उस आत्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसको कि भगवान ने प्राप्त किया है। यह हम भगवत स्वरूप को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसका दर्शन करना चाह रहे हैं, अपने भीतर उसे देखना चाह रहे हैं, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? जब तक कि मलिनता है, राग द्वेष की मलिनता है, तो कैसे अपना भगवत स्वरूप, कैसे अपना परमात्मा स्वरूप दिखाई पड़ेगा? जैसे कि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे मकान में नीचे हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, लेकिन ऊपर की जो मिट्टी की परतें हैं उन, जब तक मैं उनको नहीं हटाऊंगा तब तक कैसे मेरे जीवन में उस चीज को हासिल कर पाऊंगा? अब मुझे ये प्रयास करना है। तो राग द्वेष निवृत्ति हिंसा दि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषा सेवते नृपति। अब जो है मैं जरूर से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन सब से दूर रहूंगा, क्योंकि मुझे राग द्वेष की निवृत्ति करनी है। जिसका कोई मकसद ना हो वो बिना मकसद के राजा की सेवा क्यों करे? राजा की सेवा करता है इसलिए क्योंकि उसे उससे कुछ प्राप्त करना है। इसी तरह से मैं हिंसा आदि को छोड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने राग द्वेष को घटाना है। मैं आचरण को स्वीकार करता हूं वही आचरण को, ताकि मैं अपने अंतरंग में वीतरागता को प्राप्त कर सकूं। वास्तव में तो चारित्र वो है कि जितनी जितनी कषायें कम होती जाएं उतना उतना चारित्र है। कषाय के अभाव का नाम चारित्र है। मेरे क्रोध मान माया लोभ जितने घट जावे उतना मेरा आचरण निर्मल है, वही मेरे आचरण की निर्मलता है वास्तव में। तो इन चीजों का मुझे अभाव करना है। अगर क्रोध मान माया लोभ का, तो जिन वजहों से क्रोध मान माया लोभ मेरे भीतर बढ़ते हैं उनसे तो दूर होना पड़ेगा, मुझे नहीं होना पड़ेगा। जिन कषायों के चलते मैं पाप कर लेता हूं उन कषायों से बचना पड़ेगा। ध्यान रखना, कषाय कारण है, पाप तो कारी है। पाप बाद में होता है, कषाय पहले होती है। कषाय ही निमित्त बनती है पाप करवाने। लोभ जागृत हुआ, एक ही कषाय ले लो, लोभ जागृत हुआ चीजों का, अब क्या करना? जैसे बने वैसे प्राप्त करना। सैकड़ों तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से मुझे अपने लोभ की पूर्ति करनी है, गुस्सा करना पड़े तो करो, हिंसा करना पड़े तो करो, झूठ बोलना पड़े तो बोलो, चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े। मुझे तो संपत्ति का लोभ जागृत हो गया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। छल कपट करके करना पड़े तो दूसरे को जो है तकलीफ पहुंचा के, दूसरे को मुश्किल में डाल के भी मुझे प्राप्त हो, तो इस एक लोभ ने मेरे अंदर कितनी चीजें जागृत कर दी, मैं भूल गया सब। और अगर अपन देखें तो यही एक चीज है जो सारे पापों में ले जाती है, उसकी जड़ है कहना चाहिए। लिखा है इसीलिए कि लोभ पाप का पाप बखाना, उसका जनक है। ओरिजिनेशन कहां है उसका? अगर पाप का ओरिजिनेशन है तो वो लोभ में, वहां से जो है उसकी शुरुआत होती है। सारी कषायें भी लोभ से शुरू होती हैं। लोभ जागृत हो गया, मायाचारी शुरू, उस लोभ की पूर्ति के लिए। और अगर मायाचारी प्रकट हो गई तो अहंकार को चोट पहुंच गई, मान कषाय, और मान कषाय को चोट पहुंची तो आप इसे बाहर हो, गुस्सा है। कहां से चले थे? दिखता गुस्सा है लेकिन चले कहां से थे? लोभ से। लोभ दिखता नहीं, किसी का भी नहीं दिखता। क्रोधी आदमी से सब घृणा करत, लोभी से को नहीं करत, बताओ। जबकि लोभी भी कषाय कर रहा है। और तनक से कोई गुस्सा आ जाए तो बन के अंदर क्या सो, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, और उनको लोभ नहीं दिखा रहा, वो भी लोभ भी उतने अधिक, और आखिरी में जाता है वो लोभ। अब बताइएगा कि हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जब दृष्टि निर्मल हो गई, ज्ञान निर्मल हो गया, अब जरा देखें कि मुझे राग द्वेष घटाने के लिए हिंसा आदि पापों से बचना चाहिए, और हिंसा आदि पापों का कारण क्या है? मेरा अपना लोभ हिंसा आदि पापों में मुझे ले जाता है, तो अपने इस लोभ को कम करने का उपाय क्या है? तो संतोष। देखो कहां पहुंच गए अपन, कितनी आसानी से पहुंच गए। जो जितना संतोषी है वो उतना निर्लोभी है, और जितना निर्लोभी है उतने कम पाप करेगा, और जितने कम पाप करेगा उतना उसका जीवन निर्मल रहेगा। अब बस और बाकी तो ही को विस्तार है, सो 15 दिन चले जो हमने आपको बता दी कहूं भी बांध के नंदे। अब सैकड़ों उदाहरण देंगे हम और सैकड़ों तरह से समझाएंगे, मगर हमें कहना इतने। और वर्णी जी यही बात कहते थे कि और चाहे व्रत लियो चाहे न लियो, रात्रि भोजन को त्याग है कि नहीं, आलू खात हो कि नहीं, फलानो करत के नहीं, ये सब बाद में कर लियो, पहले परिग्रह को परिमाण कर लो कितनों रखने अपने पास। जितने कम में संतोष होगा उतना तुम्हारा जीवन निर्मल होगा, और कोई आवश्यकता नहीं। और आज यही चीज जो है सबसे ज्यादा व्यक्ति को भटकाने वाली है, परिग्रह। इसकी हाव हाव सुबह से शाम तक आदमी मशीन की तरह लगा है, अपने आचरण को अपने हाथ से मलिन बनाने की अगर कोई प्रक्रिया है तो परिग्रह का अनावश्यक संचय करना, और चाहे जिस साधन से संचय करना। और इसीलिए गांधी जी कहते रहे पूरे जीवन भर, हाँ ये लोग अपने अपने विचार देने वाले लोग रहे भारत में, कि भैया साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता रखना। बस साध्य तो आपका चाहे जो हो, पर उसकी प्राप्ति, साध्य आपका छोटा भी है और अगर साधन ठीक है तो वो साध्य को भी ठीक कर देगा, और अगर साध्य आपका बहुत श्रेष्ठ है और साधन खोटा है तो आपके साध्य को भी नष्ट करके रखे। ये ध्यान रखना बहुत। आज हमारा साधन पर कोई भी विचार नहीं, हमारा साध्य तो धन है, सुचाय जैसे साधन से कमाओ होना चाहिए। उसके लिए जो भी पाप करना पड़े करूंगा मैं, जितनी मलिनता मेरे अंदर आए आ जावे, पर किसी भी तरह से मेरा उद्देश्य मेरा लक्ष्य पूरा हो। अब बताइएगा, मेरा लक्ष्य अगर इस तरह में अब साधन अपवित्र अपना करके पूरा करूंगा तो मलिनता के अलावा और क्या हाथ में आने वाला है। भैया इन सब बातों पर विचार करें और देखें अपने भीतर झांक करके कि इन 5 पाप जो कि हम 24 घंटे करते हैं और अपने भीतर राग द्वेष की मलिनता बढ़ाते चले जाते हैं, इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है कि कितने ही हम धर्म की बातें करें, कितना हम आत्मज्ञान की चर्चा कर ले, कितना सम्यक दर्शन की चर्चा कर ले, लेकिन अभी जो है हमने अपने जीवन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया शुरू की ही नहीं। अगर हमारी दृष्टि और ज्ञान निर्मल हो गया है तो उसकी कसौटी यही है कि अब मैं धीरे धीरे अपने अंतरंग के राग द्वेष को कम करने के लिए 5 पापों से बचता हूं। हिंसा रतस्ते ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। व्रत की परिभाषा यही, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से जो जितना बचे वह उतना व्रती है, उतना वो पंडित है, उतना वो ज्ञानवान है, उतना ही वो विद्वान है, और उतना ही वो सम्यक दृष्टि है। अब चाहे आप जैसी व्याख्या कर लो, पर जिस व्यक्ति के अंदर अपने राग द्वेष घटाने का उद्यम शुरू नहीं हुआ है वो व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल नहीं बना सकता। टोडर मल जी साहब ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की परिभाषाएं बना के रख दी कि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और राग द्वेष घटावने की क्रिया का नाम सम्यक चरित्र, और बाकी प्रपंच में न पढ़ो। कुल बात कितनी है, मुझे राग द्वेष घटाना है ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी निष्ठा रखो, वही ज्ञान प्राप्त करो जिससे राग द्वेष घट जाए, और वही क्रिया करो जिससे कि राग द्वेष घटे। बस इतनी तो अपने हाथ में, निष्ठा है, ज्ञान है और आचरण है। इसी को अगर गीता में उठा के देखो तो कर्म योग, ज्ञान योग और क्या कहती है, सबसे पहला कर्म योग तो बाद में है, पहले तो दर्शन है, ज्ञान है, और फिर अंत में जाकर के कर्म योग कहा गया। भक्ति योग सबसे पहले, फिर ज्ञान योग, पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक चारित्र्य। कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में उठा के देखिएगा, प्रक्रिया वही एक प्रक्रिया दी हुई, बस अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। हमें पूर्व के हमारे लोगों ने जीवन को निर्मल बनाने की यही प्रक्रिया दी है, लेकिन अब हमारे हाथ में है कि हम कैसा उसको करेंगे। एक उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी करूं, मेरे ख्याल से इतना ही अपने लिए पर्याप्त है। आज फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, अब थोड़ा सा थक जाते हैं। क्या हुआ, एक बार एक युवक आया साधु जी के पास में और उनसे पूछा कि महाराज कुछ उपाय बताओ, जीवन अच्छा बने, हम चाहते हैं, कैसे हम इस संसार के प्रपंच से बचें और कैसे हमें शांति और सुख मिले, सब यही चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो किसी से भी पूछ लो, अगर अंतरंग से, अंतरात्मा से पूछा जाए तो शायद यही जवाब होगा कि भाई बहुत हुआ, करते तो हम सब हैं, सुबह से शाम तक घर गृहस्थी लगी है, संसार लगो है, सो सब काम कर रहे, लेकिन कोई ऐसा उपाय मिल जाता जिससे सुख शांति मिलती, हम तो इन सब चीजों से उकता गए। ऐसा लगता कई बार, जब अपन मैंने वास्तव में अगर शांति से कहीं बैठ करके सोचें, करते सब हैं, उसमें रचे पचे भी हैं, लेकिन मन में क्षण भर को विचार तो आता है। कोई भी आत्मा इतनी पतित तो नहीं है जिसके मन में इतना विचार नहीं आता हो, विचार तो आता है, ये बात अलग है कि नहीं कर पाता, वो जुदी बात है, पर आता तो सबके भीतर वह आत्मा की थोड़ी सी निर्मलता की लौ कभी कभी जो है वो प्रकट तो होती, तो उसके अंदर भी आया। अब साधु जी उससे क्या कहें, कहते भैया तो हमारा एक काम करो पहले। कहते बताओ महाराज क्या काम करें। कहते वो जो सामने पेड़ दिख रहा है, जाओ सो उस पेड़ के पत्ते तोड़ना, उसको हिलाना, उसको मार पीट, जितना हो सके तुम तो उसको जितना नष्ट कर सको उतना करना, गाली दे सको तो गाली देना। उन्होंने कहा जी कौन सा काम बता रहे आप हमें, कहने करके आओ। अब हो गया, पेड़ को तोड़ फोड़ कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, हिला रहा है, उसकी डगालें तोड़ रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा है, गिराना नहीं है लेकिन पेड़ को, देह तो ज्यो कहते हूं, लेकिन उसको जितना अस्त व्यस्त हो सके उतना अस्त व्यस्त कर दिया, गाली भी खूब दी उसने, और सारा दिन इसी में हो गया, थका हारा वापिस लौटा। भगवान क्या आदेश है, कहते सो आराम से, रात भर नींद नहीं आई, तकलीफ होती रही कि साधु जी के, बाबा जी के कहने से, और नाथ मेरा उस पेड़ ने क्या बिगाड़ा था, मैंने उससे इतना तहस नहस किया, और उसके तहस नहस करने से मेरा अपना मन भी कितना तहस नहस हुआ है, मैंने उससे नाक गालियां दी हैं, क्या प्राप्त हुआ मुझे। और रात बड़ी बेचैनी से गुजरी, सवेरे से उठ करके कहा कि भगवान जवाब दो, कुछ तो बताओ क्या करना। कहते कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं करना, कल के जैसा कुछ नहीं करना, आज तो जाओ उस पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई करना, जितना उसमें टूट फूट गया है उसको हो सके तो संभालना, सुधारना, पानी देना, खाद देना, और माफी मांग लेना कि भाई कल जो है हमसे जी सब खोटा काम हुआ, अच्छा नहीं हुआ। कहते ठीक है भगवान, हमारे मन में भी यही विचार आ रहा था, सो जा करके जो है और उसके साफ सफाई करता है, संभालता है, पानी देता है, लिपट जाता है उससे कि कल हमने बहुत गलती खाई और माफ करना मुझे, और सारा दिन वो इसी में व्यतीत कर देता। शाम को बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के आता है, वो कहता भगवान अब क्या आदेश। कहते सो आराम से, और उस दिन उसको अच्छी नींद आती। सुबह उठ करके पूछता है कि दो दिन हो गए, अब तो उपदेश दो, कुछ तो कहो। कहते उपदेश हमने दोनों दिन दे दिया, आज तो आखिरी कंक्लूजन वाली बात है और बस तुम्हें वापस लौट जाना है। क्या कंक्लूजन हुआ, क्या रिजल्ट निकला इस दो दिन की प्रक्रिया का? बोले देखो, तुमने पहले दिन जो किया उससे तुम्हारे मन में कैसा लगा? कहते बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन जो किया, कहते उससे बहुत आनंद आया। अच्छा, और बताओ, जब तुमने पहले दिन जो किया और दूसरे दिन किया उससे पेड़ को कोई फर्क पड़ा? कहते उसको का हमने पहले दिन गाली नहीं की सोजियों को, तो खड़ो तो ने हमसे कछु कही उन्हें, और हमने दूसरे दिन आए इतनो सब कछु प्रेम करो सब बातें करी, सो कछु नहीं ने थैंक्स कहा उसने, मैं वो नाराज हुआ मैं हमसे प्रसन्न हुआ, वो तो ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि यही निर्णय है, शुभ और अशुभ में से जब चुनना हो तो शुभ को चुनना, अशुभ को छोड़ देना, लेकिन ध्यान रखना कि देखो वो शुभ और अशुभ दोनों में शांत रहा। हमारा अपना स्वभाव क्या है, ऐसा ही शांत है जैसा कि हमारे ऊपर कोई भला और बुरा करे, दोनों स्थितियों में हमें शांत रहना है। लेकिन दूसरे से व्यवहार जब भी करेंगे तो भला करना है, बस संसार से पार होने का इतना ही उपाय है, इससे अधिक और क्या किया जा सकता है भैया। अशुभ से बच करके शुभ में लगना और हमेशा ध्यान रखना कि मुझे अपने उस शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है और उसी तरफ मुझे निरंतर आगे बढ़ना है, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग मिसियों में अति अति कर वापिल निद्रा में सोता हूँ,
कंटक पथ में विष कंटक होता तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तब चैल नदी तट पर तल पल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों जावे अंतर की कलियां।
तुम साधनी क्या कोई हो, जग को देवी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अमिन शर्मनिया, पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तमन्ना स्वेखो ज्ञान के प्रकाश, पाप पर भास स्वेखो वायु शिव कानी है,
जान देखो मंद विधि मान देखो सब पर विचार देखो परम प्रमाणी है,
अनुभव
के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य हो रे आनी है सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो वाणी भारती सोय जपो दिन रहे शरण आ गए सो पावे सुख से
गति चंदन चंदन को से गई चल सुधी सुधो श्री चमसावती महाराज के पावनी चरणों में ओम इन परम पूज्य स्वामी श्री कौशावती महाराज के पावनी चरणों में अनंत पद प्राप्त आगम रूपानुदी स्वाहा सभी लोग भगवान
पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने कोई बाहर से तो खामोश रहे तू बाहर से तो खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए रे हे भीतर भीतर रोए तेरा दर्द न जाने कोई कह न सके अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे ये पत्थर का देश है पगले कोई न तेरा हो तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे नाम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। समझो इसकी सच्चाई रे करम का, लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागद हो तो सब कोई बाचे, कर्म न बाचा जा। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। धीरज खोता काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे तो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, जाने किधर चले, जाने